जकरिया अध्याय तेरह पद एक। उसी समय, देखिए यहोवा बार बार कह रहा है उस समय, उसी समय। जकरिया अध्याय तेरह पद एक में आगे लिखा है, दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। वे अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर फेर लेंगे और उसे पहचान कर मसीहा और प्रभु मान लेंगे, क्योंकि आत्मा उनकी आंखों को ढकने वाला पर्दा हटा देगा और उनकी आंखें खोल देगा। वे तुरंत पहचान लेंगे कि यीशु ही प्रभु है और वही पापों को धोने वाला सोता है जो यरूशलेम वासियों के लिए खुल गया है। जकरिया अध्याय तेरह पद दो, और सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि इसराइल द्वारा फिर से मूर्ति पूजा में चले जाने की यह भविष्यवाणी है। आज वे मूर्तियां तो बनाकर नहीं रखते, परंतु वे निश्चय ही भौतिक संसार के दीवाने हैं। वे मृतकों की भी उपासना करते हैं, जैसे इब्राहिम के कब्र पर जाना, दाऊद की कब्र पर जाना, राहेल की कब्र पर जाना। वे पश्चिमी दीवार की भी लगभग उपासना ही करते हैं। वे ये मानते हैं कि इस प्रकार उन्हें परमेश्वर की निकटता प्राप्त होती है। वे स्पष्ट कहते हैं कि यदि आपको परमेश्वर के निकट जाने का अनुभव प्राप्त करना है तो वहां जाइए जहां परमेश्वर भक्त है, क्योंकि परमेश्वर उसके पास है। इसे ही तो मूर्ति पूजा कहते हैं, क्योंकि मूर्तियां रखी इसलिए जाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति का आभास कराए। मूर्ति की रचना करने का उद्देश्य ही यह है, क्योंकि मनुष्य अपने आप में परमेश्वर की उपस्थिति का आभास नहीं कर पाता है। उसकी अंतरात्मा परमेश्वर के लिए ललकती है। वो परमेश्वर को खो चुका है, अब वो क्या करे? उचित तो यही होगा कि वो एक स्मृति तैयार कर ले और अपने मन को समझाए कि वही ईश्वर है। मनुष्य की बनाई धार्मिक स्मृतियों को देखकर अचंभा होता है। मुझे किसी कलीसिया में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं उनके आराधनालय में गया, तब मुझे बहुत बुरा लगा कि उनका पुलपिट और फर्नीचर टूटी फूटी पुरानी अवस्था में था। मैंने घोषणा की कि हम उनके लिए नया पुलपिट और नया फर्नीचर तैयार करवाएंगे। आराधना के बाद एक वृद्ध महिला ने आकर मुझसे कहा कि उस पुलपिट को वहां से नहीं हटाया जाए, क्योंकि उस पुलपिट पर चढ़कर एक प्रचारक ने आंसू बहाकर प्रार्थनाएं की थी और वे आंसू उस पुलपिट पर गिरे थे। उस पुलपिट पर चढ़कर उस प्रचारक ने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश भी दिए थे। ऐसी अवस्था में उसे कैसे हटाया जाए? मैंने सोचा कि उचित तो ये होगा कि उस पुलपिट के ऊपर नया पुलपिट बना दिया जाए, और मैंने ऐसा किया। जब वो महिला आराधना में आई और उसने नया पुलपिट देखा, तो वो अत्यंत क्रोधित होकर उस कलीसिया का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे अपने साथ पीछे की ओर ले गया और दिखाया कि पुराना वाला पुलपिट यथास्थान रखा है और ये नया पुलपिट उसके ऊपर बनवाया गया है। वो महिला उस पुलपिट को वहां देखकर शांत हो गई। कैसे दुख की बात है कि मनुष्य प्रतिमाओं को अधिक महत्व देने लगता है। हिजकिया के युग में इसराइल रेगिस्तान में मूसा द्वारा बनाए गए सांप की उपासना करने लगा था। ये उनकी मूर्ति थी। वे परमेश्वर की उस उपस्थिति का और सामर्थ का आभास करना चाहते थे जो उनके पुरखाओं ने रेगिस्तान में किया था। इसलिए उन्होंने इस प्रती की उपासना करना आरंभ कर दिया। हिजकिय्याह ने उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला और कहा कि इसका नाम नहुष्तान है, अर्थात ये पीतल का टुकड़ा है, ये परमेश्वर नहीं है। वो पुलपिट भी परमेश्वर का पवित्र वस्तु नहीं थी, वो केवल जीर्ण शीर्ण एक पुराना फर्नीचर था, केवल इसलिए कि किसी स्थान पर परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के मन में प्रवेश करता है वो पवित्र स्थान नहीं हो जाता। परमेश्वर किसी स्थान में वास नहीं करता है, वो तो मनुष्य के मन में वास करता है। क्या हम आराधनालय के बाहर या अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम आराधनालय के बाहर परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं? जब आकाश स्वर्गिक मंडल परमेश्वर को समा नहीं पाता, तो क्या एक मानव निर्मित आराधनालय उसके निवास हेतु पर्याप्त होगा? जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है, तब वो इन स्मृतियों को पकड़ता है कि वे उसे परमेश्वर की उपस्थिति की याद दिलाएं, और इस प्रकार वह उनके निकट परमेश्वर की उपासना करते हुए उनकी ही उपासना करने लगता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं सारी मूर्तियों को काट डालूंगा। जकरिया अध्याय 13:2 में आगे लिखा है, और वे फिर स्मरण में ना रहेगी, और मैं भविष्यद् वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा, अर्थात झूठे भविष्यद् वक्ता और अशुद्ध आत्माओं का बहिष्कार। जकरिया अध्याय 13:3-6 तक, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। सो जब वो भविष्यवाणी करे, तब उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उसको भेद डालेंगे। इस समय हरेक भविष्यत वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे, परंतु वो कहेगा, मैं भविष्यत वक्ता नहीं, किसान हूं, क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूं। तब उससे ये पूछा जाएगा। अब ये झूठी भविष्यवाणी देने वालों को छोड़कर उस पर ध्यान आकर्षित कराता है जिसके शरीर पर घाव है। जकरिया अध्याय 13:6-7, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वो कहेगा, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाए के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। अब यहां ये समस्या है कि पद 6 को पद 5 के साथ रखा जाए या पद 7 के साथ। मेरे विचार में पद 6 पद 7 के साथ है, क्योंकि जब इसराइल को आत्मा प्राप्त होगा और उनकी आंखें खुल जाएंगी, तब वे यीशु के हाथ के घावों को देखेंगे और पूछेंगे कि वे कैसे आए। तब यीशु उनसे कहेगा, मैं अपने प्रेमियों के घर गया था और मुझे ये घाव दिए गए। यहां छाती के मूल इब्रानी शब्द का अर्थ है हाथ। पद 7 तो हम जानते ही है कि यीशु से संबंधित। जब यीशु को गेतसेमनी में पकड़ा गया था, तब सब भाग गए थे। इससे पूर्व ही यीशु ने अपने शिष्यों को इस भविष्यवाणी की पूर्ति की चेतावनी दे दी थी। अतः मेरे विचार में पद 6 7 के साथ संयुक्त है। जकरिया अध्याय 13 पद 8। यहोवा की ये वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार डाली जाएगी और बची हुई एक तिहाई उसमें बनी रहेगी। ये यहूदियों के नर संहार की भविष्यवाणी है। ख्रिस्त विरोधी आएगा और उनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। वो उनका मंदिर बनवाएगा, वो उनसे वाचा बांधेगा, परंतु 3.5 वर्ष पश्चात उस वाचा को तोड़ देगा। वो अपनी उपासना की आज्ञा देगा, तब यहूदी निर्जन स्थानों में भागेंगे, वो उन्हें खोज खोज कर घात करेगा। इस प्रकार केवल एक तिहाई यहूदी शेष बचेंगे। जकरिया अध्याय 13 पद 9। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। अर्थात वे इन अंतिम 7 वर्षों में उत्पीड़ित की ज्वाला से होकर निकलेंगे। धर्मशास्त्र में इस समय को याकूब के कष्टों का समय कहा गया है। इससे ही हम महाक्लेश कहते हैं। जकरिया अध्याय 13 पद 9 में आगे लिखा है, वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। इस समय वे जो बचे रह जाएंगे उनकी जैतून के वृक्ष में पुनः कलम लगा दी जाएगी। होशे के अनुसार बेवफा पत्नी का पुनरुद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे धोकर निर्मल बना देगा। परमेश्वर का प्रेम मुझे कभी नहीं त्यागेगा। यद्यपि मैं भटक जाऊं, परमेश्वर से मुंह मोड़ लूं, परंतु वो अपने स्थिर प्रेम के कारण मेरा त्याग कभी नहीं करेगा। वो मुझे फिर से लौटा लाएगा और अपनी संगति में स्थापित करेगा। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, कैसा अनुग्रही और कैसा मनोहर है। परमेश्वर इसराइल का अग्नि द्वारा शोधन करके उसे फिर से अपने से मिलाएगा।